ಕಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ನಾಮಿನಿ ನಮೋಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ನಿತಿ ನಾಮಿನೇ ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತೆ ದೇವೇ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶ ತಾರಿಣಿ ವಾಂಛಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಏವಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ್ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರಭಕ್ತವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತೋ ತಿಥಿ ಕೆ ಅನುಸಾರ ಆಜ್ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಲ ರಾಧಾನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಜೀ ಕಾ ಆವಿರ್ಭಾವ ದಿವಸ ಹೈ. ವೈಸೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶ ಕೆ ದಿನ ದರ್ಶಿಕಾ ಕೆ ಅನುಸಾರ 7 ತಾರೀಖ ಕೋ ಅನೇಕ ಭಕ್ತೋನೆ ಮನಾ ಲಿಯಾ ಥಾ, ಪರಂತು ತಿಥಿ ಕೆ ಹಿಸಾಬ್ ಸೆ ಏಕ್ ಮಿನಿಟ್ ಕ್ಯಾ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಯೇ ಕ್ಯಾ ಹೈ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತೋ ತಿಥಿ ಕೆ ಹಿಸಾಬ್ ಸೆ ಆಜ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಜೀ ಕಾ ಆವಿರ್ಭಾವ ದಿವಸ ಹೈ. ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಕೆ ಕಿಸಿ ಕೆ ಭಿ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಕೆ ಆವಿರ್ಭಾವ ದಿನ ಕೋ ದಿನ ಕೆ ಉಪರ್ ಹಮ್ ವ್ಯಾಸ ಪೂಜಾ ಐಸೆ ಮನಾತೆ ಹೈ. ವೈಸೆ ಸಾಧಾರಣ ವೈದಿಕ ಸಭ್ಯತಾ ಮೇ ಗುರು ಪೂಜಾ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕ ದಿನ ಹೋತಾ ಹೈ. ವೈಸೆ ವೃಂದಾವನ್ ಮೇ ಯೇ ಬಹುತ್ ಪೈಮಾನೆ ಪೇ ಬಡ ಮನಾಯಾ ಜಾತಾ ಹೈ, ಬಡೆ ಪೈಮಾನೆ ಪರ್, ಇಸಿಲಿಯೆ ಕ್ಯೂಂಕಿ ವಹಾಂ ಪೇ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಕಾ ಆವಿರ್ಭಾವ ದಿನ ಥಾ. ಔರ್ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪಾದ ಈ ಸಾರೆ ಬ್ರಜವಾಸಿಯೋ ಕೆ ಗುರು ಕೆ ಸಮಾನ ಥೇ. ಏಕ ಐಸಾ ಸಂಬಂಧ ಬ್ರಜವಾಸಿಯೋ ಕಾ ಉನ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಮೇ ಥಾ. ಔರ್ ಸಾಧಾರಣ ವೈದಿಕ ಸಭ್ಯತಾ ಮೇ ಸಬ್ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕೆ ದಿನ ಗುರು ವರ್ಗೋ ಕಿ ಉಪಾಸನಾ ಕರ್ತೆ ಹೈ. ಪರಂತು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ಜಿ ನೆ ಸಮಜಾಯ ಕಿ ಹಮ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ರೂಪ ಸೆ ಹಮಾರೆ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ ಯಾ ಕಿಸಿ ಭಿ ಆಚಾರ್ಯ ಜೊ ಹೈ ಉನ್ಕೆ ನಿಜೀಯ ಜನ್ಮದಿನ ಪರ್ ಯಾ ಆವಿರ್ಭಾವ ದಿನ ಪರ್ ಯೇ ಉತ್ಸವ ಮನಾತೆ ಹೈ. ಕ್ಯೂಂಕಿ ಯೇ ಫಿರ್ ಬಹುತ್ ಹಿ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾಪಿತ ಕರ್ನೆ ಕಿ ಬಾತ್ ಹೋ ಜಾತಿ ಹೈ. ನೀ ತೋ ಕೇವಲ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕಹೆಂಗೆ ತೋ ಕಿತ್ನೆ ಸಾರೆ ಗುರು ವರ್ಗ ಹೈ, ಆಚಾರ್ಯ ಹೈ, ಔರ್ ತೋ ವೋ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಏಕ ಜೋ ನಿಕಟತಾ ಹೋನಿ ಚಾಹಿಯೇ ವೋ ನಹೀ ರಹತಿ ಹೈ ಉಸ್ಮೇ. ಇಸ್ಲಿ ಹಮ್ ವಿಶೇಷ ರೂಪ ಸೆ ಇಸ್ ದಿನ ಪರ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಸ ಪೂಜಾ ಕೋ ಮನಾತೆ ಹೈ. ಹಮಾರೆ ಸಂಸ್ಥಾ ಮೇ ಪ್ರತಿದಿನ ಹರ್ ಮಂದಿರ್ ಮೇ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಜೀ ಕಿ ವ್ಯಾಸ ಪೂಜಾ ಯಾ ಗುರು ಪೂಜಾ ರೋಜ್ ಮನಾಯಿ ಜಾತಿ ಹೈ. ಕ್ಯೂಂಕಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಜೀ ಹಮಾರೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಆಚಾರ್ಯ ಹೈ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭಾವನಾಮೃತ ಸಂಘ ಕೆ. ಪರಂತು ಅಪ್ನೆ ದೀಕ್ಷಾ ಗುರು ಕೆ ಲಿಯೆ ಉನ್ಕೆ ಆವಿರ್ಭಾವ ದಿವಸ ಕೆ ದಿನ ಪರ್ ವಿಶೇಷ ರೂಪ ಸೆ ಜೊ ಶಿಷ್ಯ ಹೋತೆ ಹೈ ವೋ ಇಕಟ್ಟೆ ಹೋಕರ್ ಉನ್ಕೆ ಗುರು ಕಾ ಗುಣಗಾನ ಕರ್ತೆ ಹೈ. ತೋ ಯೇ ಬಹುತ್ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಚೀಜ್ ಹೈ. ಹಮ್ ಯಾದ ರಖನಾ ಹೈ ಕಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೋ ಜಾನ್ನಾ ಔರ್ ಕೃಷ್ಣ ಸೆ ಪ್ರೇಮ ಕರ್ನಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಕೋ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ನಾ ಇಸ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಹಮ್ ಕೃಪಾ ಕೆ ಉಪರ್ ನಿರ್ಭರ್ ಹೈ. ತೋ ಐಸೆ ಬತಾಯಾ ಜಾತಾ ಹೈ ಕಿ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಕೃಪಾ ಸೆ ಹಮೇ ಗುರು ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋತೆ ಹೈ. और गुरु वर्ग या गुरु की कृपा से फिर हमें भगवान की प्राप्ति होती है। दूसरे शब्दों में गुरु के आदेशों के अनुसार, उनके शिक्षाओं के अनुसार हमें ऐसे आदेश मिलते हैं और हम एक विशेष रास्ते पर चलते हैं, जिस रास्ते पर चलने से हमारी प्रगति होती है भक्ति मार्ग में। तो इस तरह से गुरु की कृपा अपने आदेशों में होती है, ये महत्वपूर्ण बात है। श्रील प्रभुपाद जी भी बताया करते थे कि बाहर की दुनिया में लोग साधुओं से आशीर्वाद चाहते हैं, और विशेष रूप से ऐसे हाथ ऊपर करके लोग आशीर्वाद देना, ये एक एक पद्धति है, एक सामाजिक पद्धति की हाथ ऊपर करके ऐसे आशीर्वाद देना। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि इस तरह के ऐसे आशीर्वाद से ज़्यादा अर्थ मतलब नहीं है। सच्चा आशीर्वाद वो होता है जब हमें अच्छे आदेश और उपदेश प्राप्त हो जाए, हमें सही ज्ञान मिले और फिर उन आदेशों का हम पालन करें, इसको आशीर्वाद कहते हैं। अन्यथा भौतिक आशीर्वाद देने के लिए कितने और उपाय हैं। तो वैसे भगवान की कृपा गुरु परंपरा के माध्यम से हम तक पहुंचती है। मूल कृपा के स्रोत हैं भगवान श्री कृष्ण, और ये कृपा कृष्ण के द्वारा जो आरंभ होती है गुरु परंपरा से होते तक हमारे हम तक पहुंचती है। हम उसको स्वीकार करते हैं। कैसे स्वीकार करते हैं? आदेशों का पालन करके। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी ऐसे एक आदर्श शिष्य रहे, और उनके युव अवस्था के दिनों में उन्होंने किस तरह से सेवा की नव वृंदावन में, अमेरिका में, ये बहुत ही सुनने लायक और चर्चा करने लायक, स्मरण करने लायक है। जब वो अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ से जुड़े तो उनकी आयु ज़्यादा नहीं थी, 1971 में पहली बार वो मिले, लगभग 50 साल होने को आए अभी। तो उस समय उनकी आयु 20 साल की भी नहीं हुई थी। तो उस समय से फिर उन्होंने श्रील प्रभुपाद और उनके प्रतिनिधियों का आश्रय लिया, और नव वृंदावन उस समय अमेरिका में कई पहाड़ी इलाके में था, और है भी, आज भी है, और वहाँ पे ठंडी बहुत होती है ठंडी के मौसम में। तो आज वहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, कमरे को गर्म करने के लिए, पानी गर्म करवाने के लिए इत्यादि, और धनराशि भी भगवान की कृपा से है, काम चल रहा है, सेवाएं हो रही हैं, लेकिन उन दिनों में बहुत बहुत कठिन था। मुझे याद है कि जब मैं राधा गोपीनाथ मंदिर में रहता था और कभी कभी महाराज जी से चर्चा होती थी, तो वो उन दिनों की चर्चा करते थे जब वो भी 20, 21, 22, 23 साल के नवयुवक थे और वो सेवा करते थे। तो उनको आदेश दिया गया कि उनको पुजारी सेवा करनी है। तो वो एक पहाड़ पे रहते थे, जो मुख्य मंदिर है नव वृंदावन में वो एक जगह था, लेकिन एक दूसरे पहाड़ के ऊपर पास में ही एक और छोटा मंदिर था राधा वृंदावन चंद्र का। तो वहाँ रह के वो सेवा करते थे, वो अकेले रहते थे वहाँ पर। तो क्या क्या सेवा करते थे? वो 6 बार जो है आरती करते थे, फिर भगवान को उठाना, भगवान को सुलाना, भगवान के लिए भोग बनाना, फिर भोग अर्पण करना, आरती करना, श्रृंगार करना, सब कुछ वो करते थे अकेले। अभी आजकल ऐसे कहाँ मिलता है देखने में, ऐसी क्षमता और ऐसी दृढ़ता और ऐसी इच्छा कहाँ पे दिखाई पड़ती है। तरुण लोगों में भी ऐसा उत्साह, ऐसी दृढ़ता आजकल नहीं दिखाई देती है। कल्पना कीजिए थोड़ा, दिन भर प्रातः काल में भगवान को जगा के, फिर दिन भर रात होने तक 10 बजे तक सोना नहीं, और उस दौरान सारी चीज़ें, फिर माला भी बनाने हैं, फिर अपने माला भी जप करना है, भगवान के लिए फूलों की माला बनानी है, फिर खुद जप भी करना है, प्रभुपाद की किताबों को भी पढ़ना है, और ये सब होते हुए भी, और वहाँ पे याद रखिए कि कोई गर्म पानी आदि नहीं था तो उनको बाहर जाना पड़ता, तो बाहर जाते थे शौच आदि के लिए, फिर वहाँ पे बर्फ़ लेके, फिर वो अपने आप को पोंछ के बर्फ़ से ही स्नान कर लेते थे, कभी ठंडे पानी से, ठंडा पानी हो तो ठंडे पानी से कर लेते थे। इस तरह से उनका जीवन था, और आर्थिक परिस्थिति भी अच्छी नहीं थी नव वृंदावन की उस समय, शुरुआत के समय, तो फिर उनको वहाँ रह के बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा, इतनी तपस्या करनी पड़ी कि आजकल के लोग यहाँ कल्पना ही नहीं कर सकते इसके बारे में। और उन्होंने ये भी कभी नहीं सोचा मुझे संग नहीं मिल रहा है और ये सेवा छोड़ दूंगा मैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है, किसी ने मुझसे ऐसे बात किया तो मैंने सेवा छोड़ दी। ऐसे नहीं, वो बिल्कुल टिक के रहे उसमें, और इतने सारे कठिनाइयां हुई, फिर भी वो अपनी सेवा में डटे रहे। और आपने एक पिक्चर भी देखा होगा, एक चित्र है उनका, जब प्रभुपाद नव वृंदावन में थे तो कीर्तनानंद स्वामी भी थे और उनके साथ साथ राधानाथ महाराज जी भी थे, उस समय वो ब्रह्मचारी थे, तो वो एक थाली लेकर चल रहे हैं, प्रभुपाद के गुरु पूजा की थाली ऐसी हुई होगी, वो लेकर चल रहे हैं, तो उस समय उन्होंने किस तरह की तपस्या की हम लोगों को सोचना भी मुश्किल है। और उनका रहने की पद्धति भी, रहने के लिए भी कोई सुविधा नहीं थी, और छोटे से कपड़े पे नीचे सोते थे, खुद प्रसाद जो भी भगवान को भोग चढ़ता था उसमें से जो बच जाता था वो ले लेते थे, और ऐसे जैसे कल्पना कीजिए आजकल कोई आश्रम में रहने वालों को भी करना मुश्किल है, और गृहस्थ भक्तों के लिए तो और भी मुश्किल है क्योंकि गृहस्थों को फिर अपना परिवार का भी देखना पड़ता है, परंतु आश्रम वासियों के लिए भी इस तरह का आजकल सोचना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो एक इतना अच्छा आदर्श उन्होंने हम सबके सामने रखा है कि कैसे एक शिष्य को बनना चाहिए, किस तरह से एक भक्त को बनना चाहिए। और ऐसे कहानियाँ, कभी कभी छोटी छोटी कहानियाँ वो बताते थे कि क्या क्या होता था, कैसे समस्याएं भी बहुत होती थी, लेकिन जितनी समस्याएं हो गई कभी भी उन्होंने अपनी सेवा इसके लिए छोड़ी नहीं, और कभी भी उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया कि मुझे ये नहीं करना वो नहीं करना है, या किसी में दोष नहीं देखा, है ना। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो हमने महाराज जी में देखा है, वो किसी में भी दोष नहीं देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको दोष दिखाई नहीं पड़ते हैं, दिखाई पड़ते हैं फिर भी वो देखते नहीं हैं, हाँ, और किसी की बुराई नहीं करते हैं। अभी एक संसार में एक प्रवृत्ति रहती है कि बात करना, हम किसी की भी बुराई करते हैं, कोई भी बात हो। एक बार वो कह रहे थे कि किसी के बारे में कोई बुराई है तो ऐसा नहीं है कि यदि वो बात सच है तो हम जब सब जगह जाके बोल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। भले कोई बात सच भी हो, भक्त को अच्छा नहीं लगता है सब जगह जाके बोलना कि ऐसे ये भक्त ऐसा है वैसे है, कभी बुराई नहीं करना। ये बहुत एक अच्छी चीज़, कई चीज़ें सीखी हैं महाराज जी से, उनमें से एक एक करके थोड़ी बहुत चीज़ें मैं बता रहा हूँ, कि कभी भी किसी में बुराई करते नहीं थे और देखते हुए भी नहीं देखते थे गलतियों को, और इतने नम्र थे। तो एक बार उनके पिताजी जो थे, महाराज जी के पिताजी, वो एक बार बम्बई आए थे। तो वो बताते थे कि कैसे महाराज जी जब एक छोटे लड़के थे, उस समय भी ये सब गुण उनके अंदर थे। वो कभी भी भोग में नहीं लगे थे और बहुत नम्र थे, तपस्वी स्वभाव के थे। और उनके नम्रता के बारे में वो बताते थे कि एक बार एक घटना ऐसे हुई, जब महाराज जी कितने होंगे, 14 साल के, 15 साल के हुए होंगे। तो उनके पिताजी माताजी ने उनको एक बार एक होटल में ले गए भोजन के लिए। तो उसी होटल में उनके एक सहपाठी एक नौकरी करते थे। वहाँ अमेरिका में ये काफ़ी प्रचलित है, जो बच्चे लोग होते हैं स्कूल में कॉलेज में, वो छोटी छोटी नौकरी करते हैं ताकि थोड़ी कमाई करके वो अपने, उनको थोड़ा पैसा मिलता है अपने स्कूल कॉलेज की फ़ी आदि भरने के लिए, उनको थोड़ा पैसा मिल जाता है, थोड़ा अपने खर्चे के लिए भी रख लेते हैं। तो ये प्रचलित चीज़ है। तो जिस होटल में महाराज जी के माता पिता उनको लेकर गए, उसी होटल में उनका जो मित्र था वो सेवा कर रहा था। वो आके सब टेबल में आके सबको देता था, आपको क्या चाहिए लिख के, फिर वो आके उनके टेबल पे रखना, जो वेटर होते हैं ना जो होटल में काम करते हैं। तो ऐसे कई विद्यार्थी वहाँ ऐसे सेवा करते हैं, अमेरिका में तो ये बहुत ही प्रचलित बात है। लेकिन जब महाराज जी ने उस समय देखा अपने मित्र को, उनको इतना बुरा लगा कि ये आके मेरे सामने आएगा, फिर उसे कुछ लज्जा जैसे हो जाए कि इस तरह से वो आ रहा है कर रहा है, तो वो वहाँ से निकल गए होटल से, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके मित्र के मित्र उनको देखे, और मित्र जाने कि महाराज जी ने उनको देखा है कि वो यहाँ पे नौकरी करते हैं, भले पार्ट टाइम थोड़े समय के लिए भी करते हो। तो इस तरह का उनका हृदय था कि हमेशा किसी को कष्ट न पहुँचे, किसी को दुख न हो, कोई कटु वचन न बोलें किसी को, हमेशा नम्र रहें। तो ऐसे गुण जो होते हैं, ये साधु स्वभाव होता है। और भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म से ही ये दैवी संपदा, तो दैवी, ये जो दैवी गुण होते हैं जन्म से ही होते हैं, आसुरी गुण भी जन्म से होते हैं। तो हम देखते हैं कि महाराज जी के जीवन में जन्म से ही ऐसे गुण उनके अंदर थे। साधु का स्वभाव उनका तो हम सब जानते हैं, तो बचपन से ऐसे वो लक्षण प्रकट कराते आए, और साथ साथ बहुत बुद्धिमान, बहुत जल्दी चीज को पकड़ लेते हैं। किसी कोई चर्चा हो रही है, कोई बहुत ही जटिल परिस्थिति है, उसके जड़ तक बहुत जल्दी से और आसानी से पहुंच जाते हैं, और कुछ उपाय निकालने में भी बहुत सक्षम है, समर्थ है। ये घटना कभी मैंने सुनाई भी होगी आप सबको, लेकिन एक बार मुझे याद है, मैं उनके कोई एक दो भक्त आए थे, वो वरिष्ठ भक्त थे, और आपस में उनके कोई गंभीर मतभेद हो गया था, और दोनों ही बहुत विचलित थे। तो जब वो आए महाराज जी के पास में, उन्होंने दोनों की बातें सुनी। अभी जो भक्त, एक भक्त सही था, उसने जो बातें कही वो सही थी, दूसरे भक्त की गलती थी। परंतु ये पहला भक्त जो है बहुत ही एक आक्रमणात्मक भाव से बात कर रहा था, और इस तरह से जो महाराज जी को अच्छा नहीं लगा। तो उनको, उनकी भावना थी कि कैसे इस मामले को एक वैष्णव पद्धति से निपटाया जाए। तो उन्होंने उस भक्त से कहा कि आपको सही होना, आप क्या चाहते हो, कि सही होना चाहते हो कि कृष्ण भावना भावित होना चाहते हो? क्योंकि जब कोई वाद होता है तो सब, हर एक व्यक्ति साबित करने के लिए आतुर होता है कि मैं ही सही हूं, मैं जो बोल रहा हूं वही सही है। तो यदि हम सही निकले परंतु हमारे कृष्ण भावना में हम पीछे हट गए तो फिर क्या फायदा। और दूसरे, किसी वाद में, किसी भी बात में, किसी भी चर्चा में हम गलत निकले परंतु हम नम्र होकर आगे बढ़े तो फिर नुकसान किसका है? दूसरे वाले का है। जो जीता उसका नुकसान है, हारने वाले की जीत हो जाती है। श्रीमद् भागवत में आपने पृथ्वी महाराज और इंद्रदेव की घटना सुनी होगी कि इंद्रदेव ने जब देखा कि पृथ्वी महाराज ने 99 अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर लिए हैं और 100वां वो करने जा रहे हैं, तब इंद्रदेव को बड़ी ईर्ष्या हो गई कि केवल मैं हूँ इस ब्रह्मांड में जिसने कि 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं। अब यदि पृथ्वी महाराज ने ये यज्ञ भी कर लिया तो मेरे बराबर का हो जाएगा, तो मेरे कुर्सी खतरे में रहेगी। तो इसलिए उन्होंने ये न के न प्रकार न पृथ्वी महाराज के यज्ञ को रोकने का प्रयास किया और पृथ्वी महाराज जी बहुत क्रोधित हो गए। उनके पुत्र भी युद्ध के लिए तैयार हो गए। बात बहुत आगे तक बढ़ गई। उस समय स्वयं ब्रह्मा जी ने आके बताया पृथु महाराज को कि 99 तक ही रहने दो। पृथु, आप एक भक्त हो, अभी 100 हो या 99 हो, आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं। अब इंद्रदेव इस समय मानने के भावना में नहीं है, तो आप जरा मान जाओ। और इंद्रदेव मान और पृथु महाराज मान गए क्योंकि वो बहुत महान भक्त थे। तो इससे हम जान सकते हैं कि हमेशा ही महाराज जी ने सिखलाया, हमेशा ही अपने आप को सही साबित करने के नहीं देखना चाहिए। चाहे हम गलत हो सही हो, परंतु हमारी भावना ऐसे होनी चाहिए, एक नम्र होना, नम्रता होनी चाहिए, एक अन्यों के साथ एक सहयोग की भावना होनी चाहिए कि प्रेम से सब कुछ निपटाएं। तो ऐसे रहने से हमारी कृष्ण भक्ति में विजय होगी, कृष्ण भक्ति में प्रगति होगी। हम यहाँ पर हमारे वाद विवाद में और छोटे छोटे युद्धों में जीतने के लिए नहीं आए हैं। ये मनुष्य जीवन का ध्येय नहीं है। मनुष्य जीवन का ध्येय है कृष्ण भक्ति की चरम सीमा को प्राप्त करना, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। तो इसलिए ये बात को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। तो महाराज जी ऐसे बहुत सारे शिक्षाएं देते हैं। महाराज जी हमेशा बोला करते थे कि हमें सबकी सबका सम्मान करना चाहिए। अभी तक मुझे याद है कि कैसे एक भक्त आए थे, तो उन्होंने वहाँ के भक्तों से बताया कि देखो ये किसी दूसरे महाराज जी के शिष्य हैं, इनको कभी नहीं लगना चाहिए यहाँ पे कि यहाँ केवल इस मंदिर में मेरे शिष्य रहते हैं। उनसे कभी ऐसे भेद नहीं करना और उनको उतने ही प्रेम से उनका देखभाल करना जितना आप सब साथ में हो। तो ये भावना हम देखते हैं महाराज जी के स्वयं के व्यवहार में भी और उनके जो शिष्य वहाँ हैं उनके बीच में भी ऐसे ही एक है। और कैसे आपस में सबको सहयोग से रहना चाहिए, इसके ऊपर कितना वो जोर देते हैं। दासानुदास, हाँ, ये शब्द प्राय हर प्रवचन में महाराज जी देते हैं क्योंकि इतना महत्वपूर्ण है कि हमें दासों के दास हैं। और कभी भी अफवाहों को फैलाना, ये करना, वो बिल्कुल उनको पसंद नहीं। बहुत इससे वो रहते थे, सतर्क रहते थे, सबको बोलते थे ऐसे बिल्कुल नहीं करना। अफवाहें तो किसी भी तरह की हो जाती है। एक मज़ेदार घटना एक बार उन्होंने कही कि उनके एक गुरु भाई हैं जिनका नाम है महाबुद्धि प्रभु। वो नरसिंहदेव भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, एक क्षत्रिय स्वभाव के हैं, बड़े हृष्ट पुष्ट शरीर के हैं। तो शुरुआत के सालों की बात है कि ऐसे एक खबर फैल गई कि महाबुद्धि प्रभु ने अपना शरीर त्याग दिया। तो ऐसे सब भक्त लोगों ने विश्वास कर लिया कि ऐसे है। तो फिर एक बार उनको फोन आया, तो महाराज जी ने फोन उठाया तो महाराज जी ने पूछा, हरे कृष्णा, कौन बोल रहे हैं? बोला, मैं महाबुद्धि दास बोल रहा हूँ। तो महाराज जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो बोला, अरे महाबुद्धि प्रभु, मुझे लगा कि आपकी मृत्यु हो गई। तो महाबुद्धि प्रभु ने उत्तर दिया, क्षमा कीजिए, मैंने आपको निराश किया। तो ऐसे मजाक में दोनों के बीच में बात हो रही थी। तो प्रभुपाद जी बोलने लगे, देखो ये दुनिया, महाराज जी बोलने लगे, ये दुनिया में अफवाहें इतनी खतरनाक होती हैं, कुछ भी लोग फैला देते हैं, तरह तरह की चीज़ें, हाँ इनकी मृत्यु हो गई, उनका ये हो गया, वो हो गया। तो इसलिए यदि हम एक साथ में रहें और बड़े प्रेम से रहें, अपने आप को वैष्णवों के दास बन के रहें, तो ये उनके सही आदेशों का पालन है। जब कोई पूछता है मुझे कि आपको क्या लगता है कि महाराज जी के सबसे महत्वपूर्ण दो तीन आदेश क्या हैं, तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि दासानुदास बनना, ये उनका सबसे महत्वपूर्ण उपदेश, ये ऐसे मैं मानता हूँ। जितने भी मैंने उनके प्रवचन सुने हैं और जितना भी मैंने उनका संग प्राप्त किया है आज तक, तो सार यही उनकी शिक्षाओं का है कि हमें दासों के दास बन के रहना चाहिए, और दूसरी बात कि हरि नाम का आश्रय लेना चाहिए। तो ये बहुत सुंदर बातें हैं महाराज जी के बारे में, लेकिन अभी आप सबको भी अपने अपने स्थानों में आप महाराज जी का गुणगान करने वाले हैं। तो महाराज जी क्या अपेक्षा करेंगे हम सबसे कि हम ऐसे ही दासानुदास की भावना बनाए रखें। ये कोई एक औपचारिकता नहीं है कि चलो मैंने एक साल 16 माला किया, 4 नियमों का पालन किया, मैंने नाम दे दिया, अब चलो मेरा दीक्षा में नम आगे चला गया, मैंने दीक्षा ले ली मैंने, ये एक औपचारिकता नहीं है। महाराज जी की अपेक्षा है कि जो राह देख रहे हैं उनसे दीक्षा लेने के लिए, और जिन्होंने दीक्षा ले भी ली है पहली दूसरी, तो उन्हें चाहिए कि वो उनके भाव को स्वीकार करें। मुख्य भाव है कि हम वैष्णवों के दासों के दास बनकर रहें और बड़े प्रेम से आदर से हरि नाम का आश्रय लेते हुए सेवा करें बड़े आतुरता से। तो ये उनकी एक अपेक्षा सारे भक्तों के प्रति है। तो भी मैं यही समाप्त करता हूँ, क्योंकि आप सब भी अपने अपने स्थानों में ऐसे अभी एक व्यास पूजा आदि मनाने वाले हैं। परम पूज्य श्रील राधानाथ स्वामी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।